नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हु सेज एलिफेंट्स कांट डांस लुई वी गेस्टनर जूनियर की प्रबंधकीय संस्मरण और व्यावसायिक विश्लेषण की पुस्तक है। इसमें गेस्टनर ने 1993 में IBM के मुख्य कार्यकारी बनने के बाद कंपनी को संकट से निकालने के अपने अनुभव दर्ज किए हैं। उस समय IBM भारी घाटे, धीमे निर्णयों, विभागीय प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों से बढ़ती दूरी से जूझ रही थी। पुस्तक केवल वित्तीय सुधार या तकनीकी उत्पादों का विवरण नहीं देती। इसका केंद्रीय विषय यह है कि किसी विशाल कंपनी का वास्तविक बदलाव उसकी संस्कृति, प्रोत्साहनों, नेतृत्व व्यवहार और बाजार को समझने के तरीके में बदलाव से आता है। गेस्टनर ने IBM को अलग अलग इकाइयों में बांटने के प्रचलित सुझाव का विरोध किया और उसकी एकीकृत क्षमता को ग्राहक समस्याओं के समाधान में बदलने का प्रयास किया। यह पुस्तक दबाव में लिए गए रणनीतिक निर्णयों का प्रत्यक्ष विवरण है, साथ ही बड़े संगठनों में जवाबदेही, सहयोग और ग्राहक केंद्रितता स्थापित करने का व्यावहारिक अध्ययन भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, IBM को तोड़ने के बजाय एकीकृत उद्यम बनाए रखने का निर्णय। गेस्टनर के सामने सबसे आरंभिक और निर्णायक प्रश्न यह था कि संकटग्रस्त IBM को छोटी स्वतंत्र कंपनियों में बांट दिया जाए या नहीं। उस समय कंपनी के अनेक हिस्से अपने अपने लक्ष्य, उत्पाद और अधिकार बचाने में लगे थे। बाहर से देखने पर विखंडन एक सरल उपाय लग सकता था, क्योंकि अलग इकाइयों की लागत और जवाबदेही स्पष्ट होती। लेकिन गेस्टनर ने ग्राहक की समस्या को केंद्र में रखकर अलग निष्कर्ष निकाला। बड़े ग्राहक केवल सर्वर, सॉफ्टवेयर या परामर्श अलग अलग नहीं खरीद रहे थे। उन्हें जटिल तकनीकी ढांचे को जोड़ने, चलाने और बदलने के लिए एक ऐसे साझेदार की जरूरत थी जो पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी ले सके। IBM की व्यापक तकनीकी जानकारी, वैश्विक पहुंच और ग्राहक संबंध यदि साथ रखे जाते तो यही उसकी विशिष्ट ताकत बन सकते थे। इसलिए कंपनी को बचाने का अर्थ हर विभाग को स्वतंत्र बनाना नहीं, बल्कि विभागों के बीच सहयोग को अनिवार्य बनाना था। यह निर्णय पुस्तक का महत्वपूर्ण रणनीतिक पाठ है। किसी संकट में संरचना बदलना तभी उपयोगी है जब वह ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाए। केवल आंतरिक जटिलता घटाने के लिए किया गया विखंडन संस्था की उन क्षमताओं को नष्ट कर सकता है जिन्हें प्रतिस्पर्धी आसानी से दोहरा नहीं सकते। गेस्टनर का दृष्टिकोण पैमाने के अंध समर्थन का नहीं, बल्कि एकीकृत पेशकश के व्यावसायिक तर्क का था। दूसरा, हार्डवेयर बेचने से ग्राहक समस्याओं के समाधान और सेवाओं की ओर बदलाव। पुस्तक IBM के रणनीतिक पुनर्निर्देशन को हार्डवेयर केंद्रित सोच से समाधान केंद्रित सोच की ओर मोड़ के रूप में प्रस्तुत करती है। पहले कंपनी की पहचान मुख्यतः अपनी मशीनों और तकनीकी श्रेष्ठता से जुड़ी थी। ऐसी स्थिति में ग्राहक सेवा का अर्थ अक्सर स्थापित उपकरणों को संभालना भर रह जाता है। गेस्टनर ने इस दृष्टि की सीमा पहचानी क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में ग्राहक की जरूरतें तेजी से बदल रही थीं। उन्हें विभिन्न प्रणालियों को जोड़ना था, लागत नियंत्रित करनी थी, इंटरनेट के अवसरों का उपयोग करना था और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना था। इसीलिए IBM ने परामर्श, एकीकरण, सॉफ्टवेयर और दीर्घकालिक सेवाओं को अधिक केंद्रीय भूमिका दी। ई बिजनेस की अवधारणा भी इसी व्यापक दिशा का हिस्सा बनी, जिसमें तकनीक को अलग उत्पाद नहीं बल्कि व्यापार करने के तरीके में परिवर्तन के साधन के रूप में देखा गया। इस बदलाव का तर्क महत्वपूर्ण है। उत्पाद की विशेषताएं अस्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकती हैं, पर ग्राहक के पूरे संदर्भ को समझने वाली क्षमता अधिक स्थायी संबंध बना सकती है। फिर भी पुस्तक यह संकेत देती है कि सेवा आधारित रणनीति केवल नया विभाग खोलने से नहीं बनती। इसके लिए बिक्री, तकनीकी टीमों और नेतृत्व को ग्राहक के परिणामों की साझा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसलिए रणनीति और संगठनात्मक व्यवहार एक दूसरे से अलग नहीं है। तीसरा, संस्कृति को गौण विषय नहीं प्रतिस्पर्धा की निर्णायक व्यवस्था मानना। गेस्टनर के विश्लेषण में IBM की कठिनाई का मूल कारण केवल गलत बाजार अनुमान नहीं था, कंपनी की संस्कृति भी उतनी ही गंभीर बाधा थी। लंबे समय की सफलता ने ऐसे व्यवहारों को मजबूत किया था जिनमें पदानुक्रम, आंतरिक सहमति, प्रक्रिया और विभागीय हित ग्राहक की जरूरतों से अधिक प्रभावशाली हो गए थे। अलग अलग इकाइयां सहयोग करने के बजाय अपने क्षेत्र और संसाधनों की रक्षा करती थीं। ऐसी संस्कृति में अच्छी रणनीति भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि रोजमर्रा के निर्णय पुराने प्रोत्साहनों और आदतों से संचालित होते हैं। गेस्टनर का मुख्य विचार यह है कि संस्कृति कोई पोस्टर, नारा या मानव संसाधन कार्यक्रम नहीं है। वह इस बात में दिखाई देती है कि किसे पुरस्कृत किया जाता है, किस व्यवहार को सहन किया जाता है, संकट में नेता क्या प्राथमिकता देते हैं और कर्मचारी ग्राहक के सामने किसके लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बाजार केंद्रितता, गति, व्यक्तिगत स्वामित्व और टीमवर्क पर जोर दिया। यह दृष्टि बदलाव को भावनात्मक अपील तक सीमित नहीं रखती। इसके बजाय वह व्यवहार की व्यवस्था बदलने की मांग करती है। पुस्तक का उपयोगी निष्कर्ष यह है कि विरासत और गौरव वाले संगठन में संस्कृति बदलना विशेष रूप से कठिन होता है, क्योंकि पुराने नियम कभी सफलता दे चुके होते हैं। अतः नेतृत्व को परंपरा का सम्मान करते हुए भी उन आदतों को चुनौती देनी पड़ती है जो वर्तमान प्रतिस्पर्धा में बाधा बन चुकी हो। चौथा, मुआवजे और मापदंडों से एक कंपनी वाली जवाबदेही बनाना। IBM के पुनरुत्थान में गेसनर ने प्रोत्साहन व्यवस्था को सांस्कृतिक बदलाव का ठोस उपकरण माना। यदि प्रबंधकों को केवल अपनी इकाई के लाभ, बिक्री या स्थानीय लक्ष्य के लिए पुरस्कृत किया जाए तो वे स्वाभाविक रूप से कंपनी के व्यापक हित के बजाय अपने विभाग की रक्षा करेंगे। यही व्यवस्था उन आंतरिक दीवारों को मजबूत करती है जिन्हें नेतृत्व तोड़ना चाहता है। इसके विपरीत, बोनस को कुल कंपनी के प्रदर्शन से जोड़ने का उद्देश्य साझा परिणामों को प्राथमिकता देना था। प्रबंधकों के लिए कंपनी में हिस्सेदारी रखने की अपेक्षा भी हितों के मेल का संकेत थी। इस तरह संदेश केवल भाषणों से नहीं, आर्थिक व्यवस्था से दिया गया कि सहयोग वैकल्पिक नहीं है। पुस्तक का यह पक्ष परिवर्तन प्रबंधन की एक व्यावहारिक सीमा स्पष्ट करता है। किसी नेता का ग्राहक केंद्रितता और टीमवर्क पर जोर तब खोखला लगेगा जब पदोन्नति, वेतन और मान्यता विपरीत व्यवहार को लाभ पहुंचा रहे हों। मापदंडों की डिजाइन इसलिए रणनीति का प्रशासनिक विवरण नहीं, उसका क्रियान्वयन तंत्र है। हालांकि किसी एक सूचक पर अत्यधिक निर्भरता भी जोखिमपूर्ण हो सकती है। कंपनी स्तर के लक्ष्य को ग्राहक संतुष्टि, निष्पादन की गुणवत्ता और दीर्घकालिक क्षमता जैसे संकेतों के साथ समझना आवश्यक है। गेसनर का व्यापक संदेश यह है कि लोग उस दिशा में ध्यान देते हैं जिसे संस्था लगातार मापती, पुरस्कृत करती और नेतृत्व के व्यवहार से विश्वसनीय बनाती है। अंत में, संकट में नकदी, अनुशासन और सिद्धांत आधारित नेतृत्व की भूमिका, हुसेज एलिफेंट्स कांट डांस किसी आरामदायक दीर्घकालिक परिवर्तन योजना का विवरण नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसे पहले जीवित रहना था। इसलिए गेसनर के लिए नकदी की स्थिति, लागत अनुशासन और तत्काल निष्पादन रणनीतिक चर्चा के बराबर महत्वपूर्ण थे। संकटग्रस्त संस्था में भविष्य की बड़ी दृष्टि तब तक विश्वसनीय नहीं बनती जब तक कर्मचारियों, ग्राहकों और निवेशकों को यह ना दिखे कि संगठन अपनी वर्तमान जिम्मेदारियां निभा सकता है। पुस्तक कठिन फैसलों, संपत्तियों के विनिवेश और बड़े पैमाने के कर्मचारी कटौती की पीड़ादायक वास्तविकता से बचती नहीं है। यह पक्ष बताता है कि बदलाव के मानवीय परिणाम होते हैं और नेतृत्व की भाषा उन्हें मिटा नहीं सकती। साथ ही गेसनर अत्यधिक प्रक्रियाबद्ध प्रबंधन के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं। उनके लिए सिद्धांत जैसे ग्राहक के परिणाम पर ध्यान, तथ्य आधारित निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और तेज निष्पादन कठोर नियम पुस्तिका से अधिक उपयोगी हैं। इसका अर्थ प्रक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में नेताओं को यह समझना चाहिए कि कौन सी प्रक्रिया नियंत्रण देती है और कौन सी निर्णय को धीमा कर रही है। पुस्तक नेतृत्व को पद की प्रतिष्ठा से नहीं, समस्याओं में उतरने, स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और परिणाम की जिम्मेदारी लेने से परिभाषित करती है। यही कारण है कि इसका संकट प्रबंधन पाठ आज भी बड़े संगठनों के लिए प्रासंगिक रहता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधकों, परिवर्तन कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों, रणनीति विद्यार्थियों और उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो समझना चाहते हैं कि विशाल संस्थाएं अपनी जड़ता से कैसे निकलती हैं। छोटे व्यवसायों के पाठक भी इससे प्रोत्साहन, ग्राहक समझ और विभागों के बीच सहयोग के सिद्धांत ले सकते हैं। हालांकि IBM के पैमाने और संसाधनों को सीधे अपने संदर्भ में लागू नहीं करना चाहिए। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह बदलाव को किसी एक प्रेरक घोषणा, नई संरचना या नई तकनीक का परिणाम नहीं बताती। यह दिखाती है कि नकदी अनुशासन, रणनीतिक चुनाव, मुआवजा व्यवस्था, नेतृत्व की विश्वसनीयता और संस्कृति सभी को एक साथ जोड़ना पड़ता है। बौद्धिक रूप से इसका सबसे मजबूत योगदान संस्कृति की ठोस व्याख्या है। गेसनर संस्कृति को अमूर्त मूल्यों की सूची नहीं, बल्कि रोज के निर्णयों और पुरस्कारों की जीवित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। समान श्रेणी की अनेक प्रबंधन पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता इसके प्रत्यक्ष अनुभव में है। लेखक बाहरी सलाहकार की तरह आदर्श मॉडल नहीं देता, बल्कि दबाव, अनिश्चितता और कठिन समझौतों के बीच लिए गए निर्णयों का पक्ष रखता है। फिर भी पाठक को इसे सार्वभौमिक नुस्खे की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। IBM का पुनरुत्थान तकनीकी उद्योग, बड़े ग्राहक आधार और एक विशेष ऐतिहासिक क्षण से जुड़ा था। इसकी स्थायी उपयोगिता इस प्रश्न में है कि क्या संगठन की संरचना, मापदंड और व्यवहार वास्तव में ग्राहक के लिए मूल्य बनाने की दिशा में एक साथ काम कर रहे हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लुई, वी गेर्सनर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।